श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय है होम बलि, अन्न बलि और पाप बलि। अध्याय 6 और 7 में विविध बलि के भिन्न भिन्न नियम प्रस्तुत हैं, पुरोहितों से संबंधित उनके विशिष्ट अंग और उनका भाग आदि के नियम व भेंटे हैं। इसे हम पुरोहितों अथवा वे लोग जो वेदी के समक्ष ईश्वर की सेवा करते हैं के विशेष नियम की संज्ञा दे सकते हैं। इस भाग का आरंभ पुरोहितों के लिए व हारून के पुत्रों के लिए विशेष निर्देश से होता है। चूंकि याजक वेदी पर सेवा करते थे और सभी प्रकार के चढ़ावे अग्नि वेदी पर चढ़ाने में व्यस्त रहते थे, ये सभी स्वर्ग के उस वास्तविकता की ओर संकेत करते हैं जहां यीशु मसीह हमारा महायाजक सेवा करता है। प्रत्येक महापुरोहित भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु पृथ्वी पर रहते तो वह पुरोहित भी नहीं होते, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए पुरोहित विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे आराधना स्थल में आराधना करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिवृत्ति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा शिविर का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें परमेश्वर की ओर से यह आदेश मिला, देखो जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाना। हम इसे इब्रानियों के पत्री 8:3-5 पद में पढ़ते हैं। मित्रों, एक और चौंकाने वाली बात कि मसीह केवल पुरोहित ही नहीं परंतु चढ़ावा भी है। उसने स्वयं को बलिदान कर दिया, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी यह कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है तथा दूसरे को नियुक्त करता है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक प्रकार के ही बलिदान को जो पापों की कमी को दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। हम इब्रानियों 10:5-12 पद में इसे पाते हैं। आजकल हमें इससे अवगत होने की जरूरत है। अब इतने अधिक धर्म हैं जिनके पास अनेकों धार्मिक परंपराएं, अनुष्ठान, जिनमें वे लंबे लबादे पहनकर धूप और बत्तियां जलाकर घेरे में गोल गोल घूमते हैं। मेरे विचार से हमारे गिरजाघरों में भी हम ऐसी बहुत सी बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। इब्रानियों के पुस्तक में परमेश्वर ने हमें यह महान आध्यात्मिक सच प्रकट किया है जिसे पालन करना होगा। मित्रों, आपके और मेरे लिए स्वर्ग पर एक ही ऐसा महान महायाजक है जो बहुत व्यस्त भी है। जब उसने कहा कि वह बैठा, इसका अर्थ छुटकारा पूर्ण हुआ। यह इसी प्रकार है कि परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया, इसका अर्थ यह नहीं कि वह थक गया अथवा उसने काम करना बंद कर दिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु थका नहीं और न ही उसने काम करना बंद किया, वह व्यस्त है। वह पृथ्वी पर मरा कि हम बच जाएं, वह पिता के दाहिने हाथ पर जीवित है कि हम भी जीवित रहें। मित्रों, मुझे और आपको उसके संपर्क में रहना है, यह वास्तविकता है, आत्मिकता है। आज समस्या या कठिनाई यह है कि हमारा जीवित मसीह से संपर्क टूट चुका है, वह हमारे लिए वास्तविकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूपरेखा को। पहला है चढ़ावे के नियम, अध्याय 6 और 7 में। इसके अंतर्गत हम 4 मुख्य भागों को देखेंगे। पहला है दोष बलि संबंधी नियमों का अंत, अध्याय 6:1-7 पद। दूसरा, होम बलि के संबंध में, अध्याय 6:8-13 में। तीसरा, अन्न बलि के संबंध में नियम, 6:14-23 पद। चौथा, पाप बलि के संबंध में, अध्याय 6:24-30 पद। मित्रों, जानबूझकर किए गए पापों के विशिष्ट कार्य। पापों की सूची यहाँ केवल नमूना है और दोषों की संख्या और सूची में जुड़ सकती थी। वे ऐसे पाप हैं जो पड़ोसी के विरुद्ध प्रतिदिन के व्यवहार में दिखाई देते हैं। हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 6:1-7 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर व लेन देन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे व उस पर अंधेर करे व पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी हुई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। मित्रों, पिछले अध्याय की अपेक्षा यह स्पष्ट रूप से ईश्वर का अलग प्रकाशन दिखाई पड़ता है। इससे पता चलता है कि पड़ोसी के विरुद्ध पाप परमेश्वर के भी विरुद्ध पाप है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्तयि सुसमाचार 7:12 पद में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। मित्रों, कुछ विशिष्ट पापों की चर्चा की गई है। उधार ली गई वस्तुओं के लिए झूठ बोलना, चीजों को सुरक्षित रखने के संबंध में जिम्मेदारी। दूसरा राजा की पुस्तक 6:5 पद में इसका एक उदाहरण मिलता है, जब एलिशा के विद्यार्थी उधार लिए कुल्हाड़ा खो बैठते हैं। संगति, इस अवतरण में व्यापार भागीदारी ही है। हिंसा से प्राप्त करना जबरदस्ती का सौदा है, जैसा अहाब ने नाबाद की दाखबारी से की। हम पहला राजा 21:2-16 में चर्चा पाते हैं। पड़ोसी को धोखा देने का अर्थ पड़ोसी की कोई वस्तु मिल जाने पर भी उसे मुकरना। मुझे दोहराना होगा कि किसी निकटतम व्यक्ति के विरुद्ध कुछ करना ईश्वर के विरुद्ध करने के बराबर है। किसी व्यक्तिगत इसराइली के आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी में दोष बलि का प्रमुख स्थान है। मूल लोग पाप का अंगीकार करने को ठड्ढा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। पाप का बोध हो जाना ख्रीष्ट के लिए एक बहुमूल्य आत्मा का बचना होता है। अब हम आगे देखते हैं होम बलि से संबंधित नियम। इसे हम लय व्यवस्था की पुस्तक 6:8-13 पद में पढ़ते हैं, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। आइए हम इसे फिर से एक बार पढ़ते हैं, 8:13 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपने सनी की जंघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। मित्रों, ये सारी बातें हमने देखा है और ये होम बलि की विधियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्न बलि से संबंधित नियमों को देखते हैं, जो लय व्यवस्था की पुस्तक से 6:14-15 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आएं और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए। मित्रों, यहाँ पर पुनः पुरोहितों को निर्देश दिए गए हैं। भेंटकर्ता एक अपराधक है जो वेदी के समक्ष परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता है और याजक बलिदान चढ़ाता है। तब हम आगे देखते हैं लय व्यवस्था 6 अध्याय के 16 और 17 पद में लिखा हुआ है, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खा जाएं, वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाएं। वह खमीर के साथ पकाया ना जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। मित्रों, वह खमीर के साथ नहीं खाया जाएगा। पुराने अनुवाद में अखमीरी ही खाया जाए। पवित्र स्थान जहाँ खाना था वह मिलाप वाला तंबू का स्थान था, अर्थात वो आंगन था। परमेश्वर वहाँ था, अतः पवित्र था। परमेश्वर की उपस्थिति स्थान को पवित्र बनाती है। स्मरण रहे कि मूसा से जूते उतारने को कहा गया, क्योंकि जिस स्थान पर वह खड़ा था वह पवित्र स्थल था। निर्गमन 3:5 पद में हम इसे पाते हैं। पत्रस भी कहता है, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। दूसरा पत्रस 1:18 में। हम फिर से आते हैं लय व्यवस्था 6:18 पद में, जहाँ पर लिखा है, हारून के वंश के सब पुरुष उसमें खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। सभी विश्वासी गण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मनुष्यत्व के महिमा और सौंदर्य के अद्भुत आनंद के भागीदार बनते हैं। प्रिय मित्र, मुझे तथा आपको उसमें अधिक आनंदित रहना चाहिए। हम लय व्यवस्था 6:19-23 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का दसवां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए, उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए, जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना, और उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाएं, वह कभी ना खाया जाए। मित्रों, पुरोहितों के लिए अन्न बलि का न केवल खाना परंतु उसमें से दशमांश चढ़ाना भी था। जो पुरोहित दशमांश ग्रहण करते थे उसे उसका दशमांश देना था, अर्थात दशमांश निरंतर चढ़ाना था। पुरोहित को लेना और देना दोनों आवश्यक था। आजकल कलीसिया में भी सेवकों को मंडली के सामने नमूने के तौर पर दशमांश लाना है। चंदा ग्रहण करने की थैली कलीसिया के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचना चाहिए, चाहे वे आराधना में ऊपर वेदी के निकट ही क्यों नहीं बैठे हों। हम सबों का देने में एक सा हिस्सा है। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पाप बलि के संबंध में देखते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 24-30 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु बध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है, और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाएं तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। मित्रों, याजकों एवं पुरोहितों के लिए पुनः आदेश दिए गए हैं। पाप बलि क्रूस पर किए गए कार्य के विषय बोलती है और उसे अग्नि बलि के साथ ही चढ़ाना था। होम बलि मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाती है। मसीह पवित्र निर्दोष होना चाहिए। तथा पाप रहित जिससे संतोष पर चढ़ावा हो, उसके पास बचाने योग्य सामर्थ होना चाहिए। इसलिए कुंवारी कन्या से जन्म लेना उद्धार के लिए जरूरी था। केवल वही पवित्र आत्मा से गर्भ में आकर कुंवारी से पैदा हुआ। पाप बली पवित्र थी क्योंकि मसीह पाप रहित थे। यद्यपि उन्हें हमारे लिए पाप बनना पड़ा, यह मेरा और आपका पाप था, उसका नहीं, जिसके कारण उसे मृत्यु सहनी पड़ी। मित्रों, वह रोम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वह किसी भी समय इस धरती से गायब हो सकता था। उसने पत्रस को बताया कि वह स्वर्ग दूतों की सेना को बुला सकता है यदि वह ऐसा करना चाहता, परंतु नहीं, वह हमारे कारण पापी बना और हमारे लिए मर भी गया। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 7 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसमें हम इस विषय पर ध्यान देंगे, दोष बलि और मेल बलि के नियम। मित्रों, इन दोनों बलिदानों के संबंध में पुरोहितों को दिए गए निर्देश हैं। दूसरे बलिदानों की अपेक्षा ये दोनों अधिक व्यक्तिगत हैं। दोष किसी इसराइली विशेष का होता, न कि पूरी मंडली का। विश्वासियों के समूह में शांति मेल अंततः व्यक्ति द्वारा ही उपयोग होता है। याजक व पुरोहित की सेवा पर अधिक जोर है। परमेश्वर की दाहिने हाथ पर आज प्रभु यीशु जो कर रहे हैं, यह उसका सुंदर चित्र है। उसने सेवा के लिए तौलिए कमर में बांधी और शुद्धता के कार्य में लगा है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है, अर्थात विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला योहना की पत्री 1 अध्याय उसका 9 पद। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हुए इसकी रूपरेखा को देखते हैं। चढ़ावे के नियम अध्याय 6 और 7। हमने 4 भागों को देखा था, अब यह 5वां भाग हम यहाँ पर पाते हैं, दोष बलि के संबंध में अध्याय 7 उसका 1 से 10 पद, और 6वां है मेल बलि के संबंध में अध्याय 7 उसके 11 से 38 पद में। आइए देखें दोष बलि के संबंध में। आइए हम लय व्यवस्था की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 से 7 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है, जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं उसी स्थान पर दोष बलि पशु का भी बलि करें, और उसके लोहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को और जिस चर्बी में अतनियां ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है, जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तुओं को ले ले। मित्रों, दोष बलि की व्यवस्था ठीक उसी नमूने पर है जैसा पाप बलि के लिए है। यद्यपि यह पाप के कार्य के लिए और बलिकर्ता को याद दिलाते हैं कि बलिदान पवित्र है, मसीह की योग्यता और कीमत को आंका नहीं जा सकता है। जब हम अपने पापी स्वभाव व दोषी कार्यों को उनकी भयानकता में देखते हैं, तब ही मसीह की भव्य महानता एवं पवित्रता का आलंकन हम कर पाते हैं। मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह को आपके मुक्तिदाता के रूप में सराहना करने के लिए आपको स्वयं में भयंकर पापी होने को समझना है। मैं आपको गिरा हुआ पतित नहीं कहता हूँ, यह तो परमेश्वर का वचन हम सब के लिए ही कहता है। रक्त का वर्णन है परंतु उस पर जोर नहीं, कारण वह पाप बलि है। हमें तो भी पता है कि नियम सबके लिए एक है। भय इस बात का है कि हम रक्त अर्थात लोहू को एक सामान्य वस्तु न समझ ले। इसके साथ आदर पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और यह अमूल्य है, और हमें सतर्क रहना चाहिए कि जो वस्तु कीमती और पवित्र है उसे साधारण न समझें। हम लय व्यवस्था उसके 7 अध्याय और 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले। वास्तव में पशु का एक ऐसा अंग है जिसे जलाया नहीं जाता, वह चमड़ा है और याजक के लिए है। ये यीशु की धार्मिकता को पहन लेने की ओर संकेत करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से संतुष्ट हैं और हमें भी मसीह में ही देखते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वासी पाते हैं या विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि उसमें कुछ भी भेद नहीं। रोमियो 3 अध्याय के 22 पद में हम पाते हैं, मसीह की धार्मिकता के कपड़े के विषय यीशु मसीह ने अपने विवाह के दृष्टांत में चर्चा की है। वह मनुष्य जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था उसे बांधकर बाहर फेंक दिया गया। इसे हम मत्तयी सुसमाचार 22 अध्याय उसके 11 से 13 पद में पढ़ते हैं। तब हम आगे लय व्यवस्था 7 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और तंदूर में वह कड़ाही में वह तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होगी जो उन्हें चढ़ाता है, और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हों चाहे रूखे हों वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। यहाँ जोर इस तथ्य पर है कि यह स्वतंत्र इच्छा से चढ़ाई गई बलि है। इसका कारण धन्यवाद है। इसका विश्वासियों के लिए एक विशिष्ट अर्थ है। इब्रानियों 13 उसके 15 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का कल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं ये पाते हैं। मित्रों, हमारे होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। हम चर्च में या कलीसिया में आराधना करने नहीं आ सकते यदि परमेश्वर को स्तुति बलिदान चढ़ावा के लिए तैयार नहीं है। एक आलोचक एवं शिकायत करने वाले मसीही ईश्वर की आराधना करने की स्थिति में नहीं होता। यह कितना महत्वपूर्ण बात है। हम लय व्यवस्था 7 के 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अखमीरी रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह मेल बलि के लोहू के छिड़कने वाले याजक की होगी। मित्रों, इस पर बहुत ध्यान दें। पद 12 में अखमीरी व फुलके व अखमीरी रोटियां, पद 13 में खमीरी रोटियां, कुछ अद्भुत प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? जबकि खमीर सिद्धांत रूप से बुराई है। इसलिए क्योंकि पद 12 में मसीह हमारा मेल बलि है और वह निष्पाप अखमीर है। पद 13 में बलि चढ़ाने वाला मेल बलि में धन्यवाद के साथ भागीदार बनता है। उसके पाप क्षमा हुए और उसका मेल परमेश्वर से हुआ है, परंतु उसमें कुछ बुराई अब तक है। खमीर मौजूद है। परमेश्वर से मेल विश्वासी के निष्पाप या पाप रहित सिद्धता पर निर्भर नहीं करता। खमीर कुछ मात्रा में मौजूद है। इसका अनुभव करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यह हमें पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 8 पद में मिलता है। मित्रों, विश्वासी को क्षमा और शुद्धता के लिए पापों का अंगीकार करना है, तभी नए स्वभाव में वह पवित्र आत्मा की शक्ति से चल सकता है। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। रोमियो 6 उसके 14 पद में हम पाते हैं, अखमीरी रोटी की भेंट उठाने की भेंट होगी। इसे स्वर्ग की ओर ऊपर की ओर उठाते हैं। इसी प्रकार हमारे हृदय परमेश्वर के सामने खुले हों कि परमेश्वर जांच कर जान ले और अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई करे। भजन संहिता 139 23 और 24 पद। हम लय व्यवस्था उसके 7 के 15 से 18 पद में आगे पढ़ते हैं, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत व स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए, और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाएगा और न पुण्य में गिना जाएगा, वह घृणित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। मेल बलि को तुरंत खाकर समाप्त करना था, इसमें देरी नहीं होना था। इसी प्रकार हमें मेल का आत्मा और परीक्षा के ऊपर विजय पाने के लिए मसीह के अति निकट रहना है। मेरे मित्रों, मसीह के निकट बने रहिए। वे जो उसके हैं उन्हें ही वह शांति प्रदान करते हैं। वे जो उसकी महिमा में अद्भुत संगति में प्रवेश कर चुके हैं, हमें उसे निहारना और उसमें विश्राम पाना है। जब आप पाते हैं कि मसीह अद्भुत और काफी है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों में प्रवेश करेगी। प्रभु यीशु बलिदानों की यह कैसी सुंदर तस्वीर है। अब मैं बाकी अध्याय के केवल कुछ वाक्यों या अंशों पर दृष्टि डालता हूँ। लय व्यवस्था 7 उसके 19 और 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छुए जाए वह न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हों वे ही खाए जाएं, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। मित्रों, हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि एक अशुद्ध व्यक्ति जिसने मेल बलि में से कुछ खाया वह जाति बाहर किया जाए। इसी प्रकार आज भी विश्वास करने वाले को परमेश्वर की संगति में प्रवेश से पहले पापों का अंगीकार करना चाहिए। तब हम लय व्यवस्था की पुस्तक के 7 अध्याय 22 23 26 और 27 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से इस प्रकार कह कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड़ व बकरी की। 26 पद, और तुम अपने घर में से किसी भांति का लोहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लोहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। मित्रों, हमें ज्ञात है कि रक्त के सेवन पर पाबंदी है और इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं। स्मरण करें कि लोहू अर्थात रक्त से ही हमारा छुटकारा हुआ है और परमेश्वर के स्वीकृत होने का केवल यही आधार भी है। उन्हें चर्बी खाने की मनाही थी क्योंकि चर्बी ईश्वर का भाग है। हम लेवियता की पुस्तक 7 अध्याय उसके 28 से 34 पद में पाते हैं कि हारून और उसके पुत्रों को किस प्रकार का भाग मिलना चाहिए। हारून उसके पुत्र और पुरोहितों को मेल बलि के पशु की छाती व जांघ का भाग प्राप्त होता था। छाती से मसीह का हमारे लिए प्रेम को संकेत करता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो के पत्र 5 अध्याय उसका 8 पद, और फिर हम आगे देखते हैं गलतियों 2:20 में, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यूहन्ना 13:1 में हम पढ़ते हैं, अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मित्रों, कंधे ख्रीष्ट की शक्ति और ताकत को बताते हैं, वह दुर्दशा से बचाने में भी समर्थ है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:27-30 पद में हम पाते हैं, वह अपनों से अनंत प्रेम करता है, वह उन्हें नीचे स्थान से भी बचाता है। यही हमारा भाग मसीह में है। मित्रों, ये सारे बलिदान पुराने नियम के अपने में ही इनका अंत नहीं है। पुराने नियम के संत भी विश्वास से बचे थे और जैसा हम विश्वास से बचते हैं, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। भजन संहिता 4:5 में हम पाते हैं, जब भी भेंट या बलिदान चढ़ाए जाते हैं और धन्यवाद दी जाती है तो परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। भजन संहिता 50:12-15, 51:19 पद में हम पाते हैं, परंतु जब दस्तूर और दूषित ढंग से भेंट लाई जाती है तो परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं। मलाकी 1:7-14 पद में हम इसे पाते हैं, पुराने नियम के सभी बलिदानों से अधिक सिद्ध नमूना की मांग की जाती है और वह मसीह में उपलब्ध हुई। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इसे हम इब्रानियों 9:28 पद में पाते हैं। इसके बाद हम आगे लय व्यवस्था 7 अध्याय उसके 35-38 पद में हम पाते हैं, जहां पर जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए और उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। मित्रों, परमेश्वर यहां अध्याय 6 और 7 में बलिदानों के संबंध में हारून और याजकों को दिए गए निर्देशों को समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारे अध्ययन का भी समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि अवश्य ही इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष मिला है। प्रभु आप सबकी सहायता करें एवं रक्षा करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ये जिंदगी वीरान है, यीशु नाम के नाम के। चुना।